ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 10 अध्याय संख्या 2 श्लोक संख्या 34। मेरे पीछे दोहराइए, सत्वम विशुद्धम श्रयते भवान स्थितो शरीरी नाम श्रेय उपायनम वपु वेद क्रिया योग तप समाधिभिः तव अर्हनम येन जनः समीहते। सत्वं विशुद्धं श्रयते भवान् स्थितो शरीरानां शे उपायनं वपुः वेद क्रिया योग तपः समाधिभिः तव अर्हनं येन जनः समीहते। सत्वं विशुद्धं श्रयते भवान् स्थितो शरीरानां शे उपायनं वपुः वेद क्रिया योग तपः समाधिभिः तव अर्हनं येन जनः समीहते। सत्वम् अस्तित्व, विशुद्धम् दिव्य, तीन गुणों से अतीत, श्रयते स्वीकार करता है, भवान आप, स्थितो इस जगत के पालन के समय, शरीरी नाम सारे जीवों के श्रेय परम कल्याण का, उपायनम लाभ के लिए, वपुः दिव्य शरीर, वेद क्रिया वेद विहित अनुष्ठानों के द्वारा, योग भक्ति द्वारा, तप तपस्या द्वारा, समाधि भी है समाधि द्वारा, तब तुम्हारी अरहनम पूजा येन ऐसे कार्यों से जन मानव समाज समीहते कृतज्ञता प्रकट करता है। अनुवाद पढ़ रहा हूं श्रील बहुपाद द्वारा, श्रील बहुपाद की, मेरे पीछे दोहराइए, हे प्रभु पालन करते समय आप त्रिगुणातीत दिव्य शरीर वाले अनेक अवतारों को प्रकट करते हैं। जब आप इस तरह प्रकट होते हैं तो जीवों को वैदिक कर्म यथा अनुष्ठान योग तपस्या समाधि आपके चिंतन में भावपूर्ण तल्लीनता में युक्त होने की शिक्षा देकर उन्हें सौभाग्य प्रदान करते हैं। इस तरह आपकी पूजा वैदिक नियमों के अनुसार की जाती है। इसका तात्पर्य है काफी लंबा, तो इसको इंस्टॉलमेंट्स में पढ़ेंगे। तब तक हरे कृष्णा। तात्पर्य पढ़ता हूं, इसका पहला पैराग्राफ ध्यान से सुनिएगा। भगवद गीता 18.3 में कहा गया है कि वैदिक कर्मकांड दान तपस्या तथा अन्य संस्तुत कार्यों का परित्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम, जो आत्म साक्षात्कार में बहुत बड़ा चढ़ा हो उसे भी वैदिक नियमों का पालन करना चाहिए। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यहाँ तक कि निम्नतम अवस्था में भी कर्मियों को सलाह दी जाती है कि भगवान के नियमित कार्य करें। यज्ञार्थार्थ कर्मोनो अन्यत्र लोकायम कर्म बंधना। विष्णु के लिए यज्ञ कर्म करना होता है, अन्यथा कर्म मनुष्य को इस भौतिक जगत से बांध देता है। यज्ञार्थात कर्मनय शब्द सूचित करते हैं कि सभी प्रकार के कर्म करते हुए मनुष्य को स्मरण रखना चाहिए कि ये कर्म भगवान को तुष्ट करने के लिए किए जाएं। स्वकर्मणा तम भ्रश्य। वैदिक नियमों के अनुसार मानक समाज का विभाजन होना चाहिए। चातुर्वर्ण्य मयाश्रेष्ठम। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्रों में से हरेक को भगवान की पूजा करनी सीखनी चाहिए। तम भ्रश्य, यही असली मानव समाज है। इस प्रणाली के बिना हम पशु समाज में चले जाते हैं। ये पहला पैराग्राफ है जी। तो यहां बात करते हैं, अनुवाद से चलते हैं आगे। हे प्रभु, पालन करते समय आप त्रिगुणातीत दिव्य शरीर वाले अनेक अवतारों को प्रकट करते हैं। त्रिगुणातीत दिव्य शरीर वाले अनेक अवतार, इसका अर्थ क्या? साधारण व्यक्ति, मैं भक्तों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं साधारण व्यक्तियों की बात कर रहा हूं। साधारण व्यक्तियों का जो विचार है, जो उसकी थॉट्स हैं, जो उनकी पढ़ाई है, जो उन्होंने सीखा है, समझा है, उसमें यही है कि अगर भगवान इस युग में प्रकट होते हैं, या पिछले युग में प्रकट हुए, या उससे पिछले युग में प्रकट हुए, या उससे पिछले युग में प्रकट हुए, और उन्होंने नराकार शरीर धारण किया, अर्थात मानव की तरह शरीर धारण किया, तो हमारे जैसे ही हैं, उनमें और हम में कोई अंतर नहीं है। जब देखने में हमारे जैसे लग रहे हैं तो शरीर में भी कोई अंतर नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि उनका शरीर भी माया से उसी प्रकार बना हुआ है जैसे हमारा शरीर माया से बना हुआ। हमारे शरीर के अंदर जो द्वैतवाद है, जो दो चीजें हैं, एक आत्मा है और एक शरीर है, तो शरीर किसका अंश है? भगवान की प्रकृति का। तो भगवान की प्रकृति को शास्त्रों में जगह जगह पे माया के नाम से बखान किया गया है। अर्थात जो मायावादी लोग हैं, उनका विचार ये रहता है, उनकी सोच ये रहती है, उनके थॉट्स ये रहते हैं कि भगवान का शरीर भी वैसे ही बना हुआ है जैसे कृष्ण है, राम है, इन सब का शरीर कैसे बना हुआ है? जैसे कि हमारा शरीर है। हमारा शरीर भी भौतिक प्रकृति का बना हुआ है, तो इनका शरीर भी भौतिक प्रकृति का बना हुआ है। परंतु शास्त्र इसका खंडन करता है। प्रभु, पालन करते समय आप त्रिगुणातीत दिव्य शरीर वाले अनेक अवतारों को प्रकट करते हैं। अर्थात मानवाकार नराकार शरीर होते हुए भी भगवान का शरीर जो है मानवों की भांति नहीं है, दिव्य है, तीनों गुणों से परे है। त्रिगुणातीत का मतलब है त्रिगुण अतीत, अतीत मतलब उससे परे, त्रिगुण मतलब जो प्रकृति के तीन गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, इनसे परे है। तो भगवान का शरीर जो है वो हमारी तरह माया का बना हुआ नहीं है। अब दो शब्द इस्तेमाल होते हैं, एक मायावाद है, दूसरा शून्यवाद है, और तीसरा किस शब्द को आप इस्तेमाल करते हैं? निर्विशेषा शून्यवादी, निर्विशेष, क्या अर्थ है इनका? इनका मीनिंग क्या है? मायावादी का अर्थ यही है कि उनका शरीर माया से बना हुआ है, ऐसा विचार है। परंतु शास्त्र खंडन करता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। शून्यवाद का अर्थ है कि जो आत्मा है जब यहां से त्याग दी जाती है तो वो शून्य अर्थात जीरो हो जाती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं बचता और कुछ भी विशेष नहीं है। भगवान के शरीर में भी कुछ भी विशेष नहीं है, वो हमारी तरह ही है, जैसे हमारा है वैसे ही उनका है। परंतु यहां चर्चा आ रही है कि त्रिगुणातीत दिव्य शरीर वाले भगवान का कोई भी अवतार हो, चाहे इस युग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में अपीयर हुए हैं, तब भी उनका शरीर जो है वो त्रिगुणातीत है, दिव्य है, साधारण व्यक्तियों की तरह नहीं है। जब आप इस तरह प्रकट होते हैं तो जीवों को वैदिक कर्म यथा अनुष्ठान, योग, तपस्या, समाधि आपके चिंतन में भावपूर तल्लीनता में युक्त होने की शिक्षा देकर उन्हें सौभाग्य प्रदान करते हैं। यहां पे खासतौर पे चर्चा आ रही है इस युग में प्रकट होने वाले चैतन्य महाप्रभु के बारे में। जहां तक सवाल वैदिक अनुष्ठान का है, इस युग के अंदर वैदिक अनुष्ठान करना क्या संभव है? इज इट पॉसिबल? क्यों पॉसिबल नहीं है, किस लिए पॉसिबल नहीं है, बताएं। वैदिक अनुष्ठान के लिए शास्त्र कहता है कि आपको छह चीजों की आवश्यकता है, छह वस्तु ऐसी हैं जिनकी आपको की रिक्वायरमेंट है। वो छह वस्तु क्या है? कर्म कांड करने के लिए मुंडक उपनिषद में चर्चा आती है, पहले मुंडक के दूसरे अध्याय के सातवें श्लोक में और फिर नवें श्लोक में क्या चर्चा आ रही है कि आपको स्थान, इसका देश का नाम वहां इस्तेमाल हुआ है, देश का मतलब है स्थान, कि जहां भी आपको यज्ञ करना है, अनुष्ठान करना है, कोई कार्य करना है, तो स्थान जो है पवित्र होना चाहिए। पवित्र, हम लोग पंडित जी को बुलाते हैं घर में, हवन कर लेते हैं, समझे कि हमारा घर शुद्ध हो गया, पर हमारा स्थान क्या पवित्र था? अब कहते हैं झाड़ू पोछा लगा दिया, चलो जी पवित्र हो गया, गंगा जल छिड़क दिया, चलो जी पवित्र हो गया। तो क्या स्थान की पवित्रता है? नदी किनारे होना चाहिए, नदी किनारे शुद्ध होना चाहिए स्थान, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो स्थान के बारे में आती हैं। तो स्थान में शुद्धता होनी चाहिए। दूसरा, समय जो है वो भी बिल्कुल वैदिक अनुष्ठान के अनुसार होना चाहिए। अनुसार, हम लोग कहते हैं अरे पंडित जी के पास गए थे, उन्होंने कहा 9 से लेकर 11 बजे तक का टाइम ठीक है, विवाह के लिए अनुष्ठान होता है, अजी रात में जो है उन्होंने बताया है 1 बजे से लेकर 3 बजे तक। इसका मतलब यह है कि पूरा अनुष्ठान 1 बजे आरंभ होकर 3 बजे तक समाप्त हो जाना चाहिए। हम लोग कहते हैं पंडित जी ने टाइम दिया है 1 से 3, लिबर्टी लेते हैं, जब 2:45 शुरू कर देंगे 5 बजे खत्म हो जाएगा, 2:30 बजे शुरू कर देंगे, मतलब हम उस समय का भी ध्यान नहीं रखते। तो वैदिक अनुष्ठान के अंदर स्थान और समय दो चीजें हैं। तीसरा है द्रव्य। द्रव्य का मतलब है वर्णाश्रम के अनुसार नियम पूर्वक कमाए पैसे से सामग्री खरीदी जाए। आपका जो इनकम है, जीवन यापन का साधन है, वो बड़ा ऑनेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल ऑनेस्टली से करना है आपको। क्या हम लोग ऑनेस्टली पैसा कमाते हैं और क्या उसका उपयोग करते हैं? नहीं करते। चौथा है कर्ता, करने वाला जो है श्रद्धावान होना चाहिए, मतलब आपकी उस अनुष्ठान में पूर्ण रूपेण श्रद्धा होनी चाहिए। हमारा क्या है कि भौतिक सुख संसार के लिए, भौतिक भोगों के लिए अनुष्ठान करते हैं तो श्रद्धा इतनी होती है, जल्दी हवन कर लें, यज्ञ कर लें, फायदा हो जाएगा, बिजनेस चल जाएगा, मतलब भगवान के प्रति न करके उसे अपने प्रति करते हैं। तो श्रद्धा किस में है? श्रद्धा भगवान में है कि श्रद्धा अपने में है? किस में कार्य करते हैं तो किसके लिए करते हैं? 99% लोग, 99%, 1% की बात नहीं कर रहा हूं, अगर वो किसी भी मंदिर जाते हैं तो अपने सुख की आकांक्षा के लिए जाते हैं, भौतिक भोगों की प्राप्ति के लिए जाते हैं। जो सबसे कॉमन आरती गाई जाती है नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया तो मैं नहीं जानता कौन सी आरतियां करते हैं, नॉर्थ इंडिया में सबसे कॉमन आरती कौन सी गाई जाती है? सबसे कॉमन ओम जय जगदीश। अब उसमें क्या आता है? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो श्रद्धा भगवान के प्रति है कि श्रद्धा अपने प्रति है? डिमांडिंग है हम भगवान की, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है। आरती गा रहे हैं, आरती का अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब होता है दुखी। आरती का मतलब है मैं दुखी हूं इसलिए मैं आपका गुणगान कर रहा हूं कि आप जरा प्रसन्न होकर मेरी आकांक्षाएं मेरी कामनाओं की पूर्ति कर दे, फुलफिल माय डिजायर्स, मेरी इच्छाओं की पूर्ति कर दे। मेरी इच्छा क्या है? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो श्रद्धा किसके प्रति? भगवान के प्रति है कि अपने प्रति है? किसके प्रति श्रद्धा है? उसके बाद कि मंत्र उच्चारण में गलती नहीं होनी चाहिए। एक एक शब्द का उच्चारण जो है बिल्कुल सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। अब आप जो है अपने घर के अंदर किसी ब्राह्मण को बुलाइए पूजा करने के लिए, तो वो कौन से शब्द खा गया है कि आपको तो मंत्र आता नहीं, आपको मालूम है क्या? वो आधा बोला है कि पूरा बोला है, कम बोला है कि ज्यादा बोला है, कौन से शब्द उसने पूरे इस्तेमाल किए हैं, कौन से नहीं इस्तेमाल किए हैं, वो आपको अगर आते होंगे तो पता लग जाएगा कि मंत्र उच्चारण भी ठीक नहीं है। फिर कभी आप जो है घर में हवन कराइए, लोकल ब्राह्मण को बुलाइए, पंडित जी को बुलाइए, तो क्या करेंगे? अभी उनका मंत्र उच्चारण चल, फोन आ जाएगा, फोन सुन लेंगे बीच में, हाँ हाँ अभी आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ, हवन कराओ अभी आधे घंटे में आ रहा हूँ, उसके बाद फिर दोबारा से शुरू कर देंगे। मतलब आप उनको देखेंगे कि आपका मंत्र उच्चारण भी जो है परफेक्शन में नहीं है। आज की तारीख में यज्ञ करना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको मंत्र उच्चारण करने के लिए ठीक से ब्राह्मण भी नहीं मिल पाता। और छठा पॉइंट है इसके अंदर, जो भी कार्य किया जाए संपूर्ण विधि पूर्वक किया जाए, विधि पूरी करी जाए उसके अंदर। आप चार वीडियो देख लीजिएगा मैरिज के टाइम के, और चारों वीडियो को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मंत्रों में भी आपको बदलाव मिलेगा, सिस्टम में भी बदलाव मिलेगा, करवाने में भी बदलाव मिलेगा। जब वैदिक अनुष्ठान के अंदर एक पर्टिकुलर तरीका बता रखा है कि इस तरीके से आपको कार्य करना है, तो फिर फर्क क्यों है, डिफरेंस क्यों है, अंतर क्यों आ रहा है? इसका मतलब है कि करने वाले को तो जल्दी होती है काम निपट जाए मेरा, और करवाने वाले को भी जल्दी होती है, अरे भैया कहीं अगले घर भी जाना है, दूसरे घर भी जाके देखना है, आज दक्षिणा वहां से भी लेनी है, यहां से भी लेनी है, वहां से भी लेनी है। तो अनुष्ठान, वैदिक अनुष्ठान के बारे में बताया गया है, वेदों के अंदर 80% जो मंत्र हैं, अगर हम 1,00,000 मंत्र लेके चलते हैं तो 80,000 मंत्र जो हैं वो वैदिक अनुष्ठानों के हैं, कर्मकांड के हैं, जिससे कि आप भौतिक संसार के अंदर सुख भोग कैसे मिलेगा उसके लिए आपको जो है सारे तरीके बताए गए हैं, उसके लिए मंत्र बताए गए हैं। 16,000 मंत्र जो है ज्ञान कांड के हैं, ज्ञान प्राप्ति के हैं, और 4,000 मंत्र ऐसे हैं जो भक्ति योग के हैं, भगवान की प्राप्ति के हैं। तो हम लोग जो है जब वेदों को पढ़ना शुरू करते हैं तो पीछे से पढ़ना शुरू नहीं करते, बिगनिंग तो पहले से ही करेंगे ना, और पहले से जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अट्रैक्शन आता जाएगा, उलझते जाएंगे और आगे उपासना कांड तक हम पहुंचेंगे ही नहीं, वहां तक हम पहुंचेंगे ही नहीं, यहीं आके अटक जाएंगे। इसके बाद कहा गया है योग तपस्या समाधि आपके चिंतन में भावपूर्ण तल्लीनता। योग का यहां चर्चा आई है जो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, कि यज्ञ करना चाहिए, दान देना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। तपस्या का अर्थ क्या है? तप किसे कहते हैं? बड़ा तपस्वी है तो क्या अर्थ है? व्हाट डज इट मीन? यस प्रभु, एक्सेप्ट करें समथिंग जोर से बोलो, इनकन्वीनियंस नहीं, ठीक है। इसको जरा सिंपल भाषा में एक्सप्लेन किया जाए। सोने को कुठाली में तपाया जाता है, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा जाता है, तो वो तप के कुंदन बनता है, तपस्या है। तपस्या का मतलब ये हुआ कि अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस के अंदर भी आप जो है भगवान के प्रति समर्पित रहते हैं। अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस फेवरेबल नहीं है, आग में तपाना सोने को फेवरेबल नहीं है, परंतु प्यूरिफाई करने के लिए। तपस्या का मतलब यह है कि आप अपने आप को प्यूरिफाई कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं। उसके लिए जो प्रतिकूल परिस्थिति है, अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस भी हैं, तो उनके अंदर भी आप भगवान के प्रति समर्पित हैं, ये तपस्या है। फेवरेबल सर्कमस्टांसेस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज वैल्यू गुडू गुड है, कोई दिक्कत थोड़ा है। आप एक एग्जाम्पल देता हूं, प्रभुपाद ने दो भक्तों से कहा तुम इंग्लैंड चले जाओ, दो से कहा ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, दो से कहा न्यूजीलैंड चले जाओ, दो से कहा यहां। अरे भाई, जहां आपके पास एक सर्कमस्टांसेस अवेलेबल है, भक्त ऑलरेडी आ रहे हैं ना भक्त, यहां मंदिर की भी बात करें तो यहां डिवोटीज आ रहे हैं। आपने एक प्रोग्राम शुरू कर दिया, दूसरा शुरू कर दिया, तीसरा शुरू कर दिया, तो जो डिवोटी आरंभ कर रहा है उसके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मंदिर के कमरे हैं, हॉल है, तरिया हैं, चटाइयां हैं, उसको कारपेट्स हैं, व्यास आसन है, उसके लिए कुर्सियां हैं, मेज हैं, प्रसाद है, एवरीथिंग इज अवेलेबल, उसको कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब दो भक्तों से कह दिया कि आप कीर्ति नगर में प्रोग्राम शुरू करो, वहां मंदिर से कोई सपोर्ट नहीं है। अब वो दो भक्त वहां पे मोहल्ले में जाके पर्चे बांटेंगे, लोगों को बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे, कीर्तन करेंगे, दरिया बिछाएंगे, माइक लाएंगे, सिस्टम लाएंगे, कुछ धन का इंतजाम करेंगे, प्रसाद करेंगे, तो सर्कमस्टांसेस फेवरेबल हैं कि अनफेवरेबल हैं? फेवरेबल तो नहीं है। मैं कल ही बात कर रहा था, गुड़गांव में लेक्चर दे रहा था, वहां भक्ति वृक्ष की चर्चा चल पड़ी, तो माता ही कहने लगी प्रभु जी बड़ा मुश्किल है, लोग इकट्ठे ही नहीं होते, लोगों को SMS करने पड़ते हैं, लोगों के घर में जाना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है, पैम्फलेट देने पड़ते हैं, छोटी मोटी किताबें देनी पड़ती हैं ताकि अट्रैक्ट होके आए, अट्रैक्ट ही नहीं होते। तो वो तपस्या कर रहे हैं, प्रचार के हेतु तपस्या हो रही है, भगवान के प्रति समर्पण है कि मुझे प्रचार करना है। तो ये बात हमने देखी है, हमने भी 1997 के अंदर प्रोग्राम शुरू किया जनकपुरी में, कोई सपोर्ट नहीं थी, मंदिर में भक्त ही नहीं होते थे। आज तो मंदिर भक्तों से भरा पड़ा है, मंदिर में डिवोटी नहीं थे, कैसे हम कीर्तन करते थे, कैसे हम प्रचार करते थे, कैसे खुद दरिया बिछाते थे, खुद माइक सिस्टम लगाते थे, खुद ही बैठ के लेक्चर करते थे, तो बड़ी कठिनाई पूर्ण स्थिति है। तो तपस्या का मतलब है कि आप अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस के अंदर भगवान के प्रति समर्पित हैं, भगवान के प्रचार कर रहे हैं, भगवान के नाम जप का प्रचार कर रहे हैं, भगवान के कार्यकलापों के नाम गुण, नाम रूप गुण लीला धाम का वर्णन कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, सुना रहे हैं, प्रचार है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन आसान है क्या? अब लाल बत्ती पे खड़े होते हैं, किताब देते हैं, शीशा बंद कर लेता हूं, शीशा ही नहीं खोलता, अब कट 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 करते हैं फिर भी शीशा नहीं खोलता। कितने लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं? इजी है क्या प्रभु जी? आसान है, तपस्या है, वो धूप है, प्रसाद है। रथ यात्रा में जाओ, भक्त भाग रथ यात्रा वहां निकल रही, भक्त उससे एक मील पहले बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। मुझे याद है हम लोग लुधियाना गए थे, मधुसुंदर प्रभु जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, उसने शीशा बंद कर दिया, मधुसुंदर की बाजू फंस गई शीशे के अंदर, अब ना बाहर निकल रही है ना अंदर है। बड़ी मुश्किल से हाथ पैर जोड़ के उसके बाजू निकलवाई और किताब उसने फिर भी नहीं ली। तपस्या है, मतलब आप अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस के अंदर जो है भगवान के प्रति समर्पित होना है, दिस नॉट ए इजी जॉब। समाधि का मतलब यह है कि अब आप जो है भगवान के प्रति इतना समर्पित हैं कि आपको और कोई कार्य सूझता ही नहीं। समाधि में और भी वैरायटी आती है, असंप्रज्ञात समाधि है, संप्रज्ञात समाधि है, आपको जो है तीन दो चीजें दिखाई देती हैं साधना में, ध्येय क्या है, ध्यान किस पे लगाया जा रहा है, वो समाधि के वो बहुत अगले हायर स्टेप्स हैं। पर समाधि के बारे में प्रभुपाद जो है जगह जगह लिखते हैं, अगर आपको आत्म साक्षात्कार हो गया है तो आप समाधि के लेवल पे आ गए, यू आर एट दैट लेवल। अब आता है आपके चिंतन में भावपूर्ण तल्लीनता। भाव शब्द इस्तेमाल किया, भाव भाव में पूर्णता, मतलब आपका भगवान के प्रति 100% भाव होना चाहिए। कैसा? मोटे तौर पे कहा जाए स्थूल तरीके से तो दो प्रकार का भाव है, या तो प्रेम का है और या वैर का है। तो भावपूर्ण तल्लीनता मतलब फुल कंसंट्रेशन से आप भगवान के प्रति प्रेम में समर्पित हैं। जैसे एक लड़का लड़की से प्रेम करता है तो लड़की की किसी बात को टालता नहीं है, वो जो कहती है वो करता है, जो उसकी डिमांड है वो कहेगी ना सिनेमा हॉल के बाहर 3 बजे मिलो तो 2:45 जाके खड़ा हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं लेट हो जाऊं। तल्लीन है किसमें? उस लड़की के प्रेम में। तो आप किसके प्रेम में तल्लीन है? भगवान के। इसका मतलब है भगवान ने जो आदेश दिए हैं, भगवान ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उसके प्रति आपका समर्पण है। उस इंस्ट्रक्शन में कोई मिस्टेक नहीं हो जाए, आगे पीछे गलती ना हो जाए, कोई ऐसा ना हो कि मेरी तरफ से कमी रह जाए, 100% आप जो है उस इंस्ट्रक्शन के प्रति समर्पित है। यही भगवान ने कहा है, जो श्रद्धा पूर्वक ईर्ष्या रहित होकर मेरे आदेश के द्वारा अपने कार्य करते हैं वो सकाम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। 3rd अध्याय का 31वां श्लोक है भगवद गीता का। अगर आपको भगवान के धाम जाना है तो उसका एक ही रास्ता है, भगवान के प्रति भावपूर्ण तल्लीनता। योग भी उसी में आ जाएगा। अनुष्ठान, वैदिक अनुष्ठान में जो ज्ञान कांड के बाद उपासना कांड के अनुष्ठान है वो करेंगे आप। जैसे सिंपल बात है, आपको भगवान का प्रेम प्राप्त करना है तो कैसे करेंगे? मैं सेवक हूं और वो स्वामी है, तो स्वामी होने के नाते स्वामी के आदेश का पालन करना सेवक का कर्तव्य है कि नहीं है? अब भगवान को भोग लगाना है, वैदिक अनुष्ठान है। कर्म कांड अलग है और ये अनुष्ठान अलग है। ये आपके अनुष्ठान आएंगे उपासना कांड में, भगवान की उपासना करनी है तो आपको क्या क्या कार्य करने चाहिए? तो उसमें एक कार्य क्या है? भगवान को भोग लगाना। अब भगवान को भोग लगाना है तो उसके अंदर भी भावपूर्ण तल्लीनता चाहिए, भगवान के प्रति आपका भाव होना चाहिए, आपका प्रेम होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। ये जो बन रहा है भगवान के प्रति बन रहा है, भुनभुन करते हुए कुड़कुड़ करते हुए नहीं बनाना। बड़ी मुश्किल से रोते धोते बनाया और भगवान के आगे थाली रख दी, चलो भी भोग तो लगाना ही है। तो क्या आपकी चेतना भगवान में थी या गुस्से में थी, कुड़कुड़ में थी या कष्ट में थी? तो चेतना प्रत्यात्मना पत्रम पुष्पम फलम त्योम में आखिरी शब्द है प्रत्यात्मना, मतलब शुद्ध चेतना वाले। तो शुद्ध चेतना वाला व्यक्ति जो है जब भगवान को अर्पित करता है, आपने भगवान को भोग लगा दिया। अब वैदिक अनुष्ठान में क्या है कि हम चाहते हैं कि हमारा हर समय भजन हो, हर समय। भगवद गीता कहती है अनन्य चेता सत्यम यो, हर समय चिंतन होना चाहिए, हर समय भजन होना चाहिए। जब भोजन पाते हैं तो भजन कैसे होगा बताएं? कोई फॉर्मेट है? शास्त्र ने उसका भी फॉर्मेट दिया है, उसमें दोनों बातें हल होती हैं, भजन भी होता है और हेल्थ भी बनती है, भजन भी होता है और हेल्थ भी बनती है। आप भोजन प्राप्त करने से पहले महाप्रसादे गोविंदे करते हैं, करते हैं ना, मतलब आपने भोजन पाने से पहले भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद पाने से पहले आप महाप्रसादे गोविंदे करते हैं। गले में तुलसी माला है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, बहुत वैष्णवों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। अब एक बात समझिएगा, अगर हम जो है भगवान का जब प्रसाद को खाते हैं, हमने ग्रास उठाया, तो आपको हरे कृष्ण महामंत्र का मन ही मन उच्चारण करना चाहिए, मन ही मन, बोल के नहीं, मन ही मन आपने उसका उच्चारण किया, ग्रास को मुख में डाला, फिर उच्चारण किया मन ही मन दो बार, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कितने शब्द हैं? 16। दो बार उच्चारण किया तो कितने शब्द हो गए? दांत कितने हैं? फॉर्मूला है कि अगर आप 32 बार शब्दों का उच्चारण करके जो उसको 32 बार चबा, हर बार हरे के बाद चबाया, कृष्ण के बाद चबा, हरे हरे कृष्ण करके चबाते जा रहे हैं। साइंस ये कहती है कि जितना आप भोजन को चबाओगे उतना आपको ज्यादा हजम होगा, साइंस के शब्द है, मैं डॉक्टर होने के बातें बात कर रहा हूं। बचपन में भी पढ़ाया जाता है कि आपको भोजन को बहुत अच्छे तरीके से चबा के ग्रहण करना चाहिए। अब यहां चबाने में उन्होंने एक शास्त्रिक पुट दे दिया कि अगर आप उसे 32 बार चबा लेते हैं तो वो भोजन जो है, अब होता क्या है, साइंस ये कहती है कि जब भी आप भोजन प्राप्त करते हैं तो आपके सेलेवा जो जो थूक है इसके अंदर टाइलिन नाम से एक टाइलिन नाम से एक होता है एंजाइम जो कि शुगर को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता, तो आप जितना भोजन को मुख में चबाएंगे उतना टाइलिन ज्यादा बनेगा, उतना आपके पेट की मिक्सी को काम करना पड़ेगा। मोटा मोटा चबाएंगे तो पेट को चूरा करना पड़ेगा, यहां पे पेट को चूरा नहीं करना पड़ेगा, मुंह में चबा लिया आपने तो आपका भजन भी चल रहा है, भोजन भजन बन गया आपको, भगवान की सेवा में आपने पहले भोग लगाया था, अब उसको प्रसाद के रूप में पा रहे हैं, अब आप उसको चबा रहे हैं अच्छे तरीके से, और साथ ही आप में मन ही मन हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, तो 32 दांत 32 शब्द और 32 बार चबाया गया, आपको देखिए आपकी आरोग्य हेल्थ बनती है कि नहीं बनती है, खाना ठीक से हजम होता है कि नहीं होता है। साइंस भी कह रहे हैं इसके अंदर, साइंटिफिक पुट भी है और शास्त्रिक पुट भी है कि भोजन को किस तरीके से लेना चाहिए। अब आती है चर्चा, यहां पर प्रभुपाद जी लिखते हैं यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ क्या होता है? यज्ञ है, आप यज्ञ करते हो, सिंपल हवन की बात करता हूं तो आखिरी आहुति विष्णु के नाम पे डाली जाती है। आप अपने आप को भगवान से जोड़ते हैं यज्ञ के माध्यम से, तो कोई चीज जो एक से दूसरे से जोड़ती है पुल कहलाती है, ब्रिज। आप नदी के इस पार हो, नदी के उस पार जाना है तो एक ब्रिज चाहिए आपको। मैं इस पार हूं, भगवान उस पार है, भगवान से संबंध बनाना है, भगवान के पास जाना है तो एक यज्ञ चाहिए, पुल चाहिए। तो यज्ञ एक ऐसा पुल है जिसके द्वारा भगवान के साथ संबंध बना के भगवान के धाम जा सकते हैं। तो यहां किस यज्ञ की स्तुति करी गई है कि आप वैदिक अनुष्ठान कर्मकांड के अनुसार कर नहीं सकते हैं, दूसरे अनुष्ठान आपके लिए मुश्किल है, सिंपल अनुष्ठान है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह जो भी कार्य किया जाए भगवान को तुष्ट करने के लिए किया जाए। आगे लिखते हैं कि मानव समाज के अधून कार्यों का वर्णन श्रीमद् भागवत में गोखर गौ और गधों के कार्यों के रूप में हुआ है। स एव गोखर, हर व्यक्ति देहात बुद्धि से कार्य करता है जिसमें समाज मैत्री तथा आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के सुधार के प्रति प्रेम निहित रहता है। इस तरह सारे कार्यकलाप अविद्या में संपन्न होते हैं। ज्ञान नहीं है लोगों को, अपनी मर्जी से करते हैं, मैं अपनी मर्जी से भगवान की सेवा करता हूं जैसा मुझे समझ में आया या जैसा परिवार वालों ने बताया। मैंने शास्त्र के अनुसार भगवान की सेवा करने का तरीका नहीं सीखा, इसलिए अविद्या है। इसलिए भगवान हमें सिखलाने के लिए आते हैं किस तरह वैदिक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना चाहिए। इस कलयुग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और यह उपदेश दिया कि इस युग में वैदिक कार्यकलापों को ठीक से संपन्न नहीं किया जा सकता, जो बात मैंने पहले कही है यहां कन्फर्म हो गई, क्योंकि लोग अत्यंत पतित हो चुके हैं। उन्होंने शास्त्रों के आधार पर संस्तुति करी, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तव्य 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 गति अन्यथा। इस कलयुग के अंदर दिखावे के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन है भगवान नाम का कीर्तन, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन विश्व भर के लोगों को सिखा रहा है कि हरे कृष्ण मंत्र का किस तरह कीर्तन किया जाए। ये सभी स्थानों सभी समयों में अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। हमें वैदिक सिद्धांतों की शिक्षा देने के लिए भगवान प्रकट होते हैं जिससे हम उन्हें समझ सकें। वेदश्च सर्वे अहम वेद्य, हमें ये जानना चाहिए जब कृष्ण और श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे तो अपने शुद्ध सत्व शरीरों के साथ प्रकट हुए थे। हमें कृष्ण अथवा चैतन्य महाप्रभु के शरीरों को अपने जैसा भौतिक मानने की भूल नहीं करनी चाहिए क्योंकि वे समस्त मानव समाज के लाभ हेतु प्रकट हुए थे। भगवान अहतुकी की कृपावश विभिन्न युगों में अपने शुद्ध सत्व शरीर के साथ मानव समाज के दिव्य स्तर का उत्थान हेतु प्रकट होते हैं। दुर्भाग्यवश आधुनिक राजनेता तथा अन्य नेता जीवन की स्थूल सुविधाओं यस्यात्म बुद्धि कुणपेत्र धातु के पे बल देते हैं और इस या उस बात के कार्यकलापों पर अपना ध्यान एकाग्र करते हैं जिन्हें वे कई प्रकार की पुष्पित सुंदर भाषा में वर्णन करते हैं। मूलतः है, ऐसे कार्यकलाप पशुओं के कार्यकलाप है स एव गोखरा। हमें भगवद गीता से कर्म सीखना चाहिए जो मानव ज्ञान के हेतु सब कुछ बताती है। इस प्रकार हम उस कलयुग में भी सुखी बन सकते हैं। तो यहाँ बहुत बढ़िया बात कही है, बाकी बातें तो हमने डिस्कस कर ली पहले ही। एक बात कही है कि इस कलयुग के अंदर सुखी बनने के लिए हमें कर्म करना चाहिए और कर्म करना चाहिए भगवद गीता के अनुसार। तो भगवान ने क्या कहा है अंत में आके, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मन अपना भगवान को दे दें, भगवान की पूजा करें, भगवान के भक्त बने और भगवान को नमस्कार करें। अगर ये चार कार्य हम सीख लेते हैं तो अगला स्टेप आता है सर्वधर्मान प्रत्यजम मामेकम शरणम व्रज। तब आप जो है भगवान के प्रति विनयशील होकर श्रद्धा पूर्वक ईर्ष्या रहित भगवान के प्रति समर्पित हो जाएंगे। और समर्पित होने का मतलब है अब आप और किसी चीज पे ध्यान नहीं है, केवल भगवान पे कंसंट्रेशन है बस। आपका पूर्ण धारणा पूर्ण ध्यान जो है भगवान के प्रति रहेगा, भगवान के प्रति कंसंट्रेट करेंगे, भगवान के प्रति समर्पण करेंगे, भगवान के आदेश का पालन करेंगे तो आप जो है भगवान के धाम जा सकते हैं। अब थोड़ी सी चर्चा श्यामानंद प्रभु की। श्री श्यामानंद प्रभु का तिरोभाव दिवस है, उनके बारे में चर्चा पढ़ते हैं। उनके जन्म के पूर्व अनेक संतानों को खो बैठने के परिणाम स्वरूप दुखी हो जाने के कारण उनके माता पिता ने उनका नाम दुखी कृष्णदास रख दिया। हृदय चैतन्य से दीक्षा ग्रहण करने के उपरांत वे कृष्णदास कहलाए। वृंदावन में श्री जीव गोस्वामी के अधीन गोस्वामी ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर एवं श्रीनिवास आचार्य का संग किया। अनेक नूपुर आख्यान वर्णन करते हैं कि किस प्रकार कृष्णदास को राधा रानी की कृपा श्यामानंद नाम और विशिष्ट तिलक चिन्ह प्राप्त हुआ। महज्जन इस विषय में ये विवरण देते हैं, एक उनके माथे उनको फॉलो करते हैं, उनके माथे पे एक तिलक का निशान है जिसको वो कैसे प्राप्त हुआ श्यामानंद प्रभु को उसमें बताया गया। वृंदावन में वास करते समय कृष्णदास प्रतिदिन भोर होने से पूर्व वहां की गलियों को बुहारते थे। वे इस मंतव्य से कि विनीत सेवा करते थे कि वैष्णवगण जब दर्शनार्थ मंदिरों में जाएं तो उनके पांवों को पीड़ा न पहुंचे। एक दिन प्रातःकाल उन्हें एक मनमोहक सुंदर स्वर्ण नूपुर मिला। नूपुर का मतलब है, नूपुर किसे कहते हैं, पायल में जो घुंघरू होते हैं, घुंघरू वाली पायल कह लीजिए। जब ललिता तथा विशाखा सखी ने कृष्णदास से वे नूपुर मांगा तो उन्होंने कहा वे उसे केवल उसी की मूल स्वामिनी को देंगे। ये गोपियां कृष्णदास की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें श्रीमती राधिका के समक्ष ले गईं। राधा रानी ने उन्हें अपने पांव में नूपुर पहनाने की अनुमति प्रदान कर दी, किंतु वे नूपुर बांधने के पूर्व कृष्णदास ने सत्समान उनसे अपने मस्तक से लगाया। ऐसा करने से उनके ललाट पर एक नवीन तिलक चिन्ह अंकित हो गया जो आज भी अनुयायियों के माथे की शोभा बढ़ाता है। कृष्णदास के दिव्य सौभाग्य से प्रमुदित होकर श्री जीव गोस्वामी ने उन्हें श्यामानंद नाम प्रदान किया है जिसका अर्थ है वह जो श्रीमती राधा रानी को आनंदित करे अथवा श्याम सुंदर कृष्ण का दास। हृदय चैतन्य के तिरोधान के कुछ समय उपरांत उन्होंने श्यामानंद को स्वप्न में दर्शन देकर प्रचार कार्य करने को कहा। अपने प्रधान शिष्य रसिकानंद की सहायता से श्यामानंद ने गौर नित्यानंद की सेवा अर्चना का उड़ीसा में सर्वत्र प्रचुर प्रचार किया। वृंदावन के राधा श्याम सुंदर एवं राधा दामोदर के मध्य स्थित मार्ग पर दूसरी ओर श्यामानंद की पुष्प समाधि विराजमान है, जिसमें निशिवासर कीर्तन होता रहता है। श्री श्यामानंद प्रभु तिरोभान दिवस की जय। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की। ताई गौर प्रेमानंदी।